मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाश श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और वही अपने शिक्षा गुरु श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस मंदिर के व्यवस्थापकों की को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका हम आभारी हैं कि यहां पर कुछ हरि कथा बोलने के लिए वैदिक सनातन धर्म के संबंध में कुछ आप लोगों को स्मरण कराने के लिए इन्होंने व्यवस्था की है, इसलिए इन लोगों का आभार प्रकट करता हूं। हम लोग आप लोग सुना कि हम भारतवर्ष के वृंदावन मथुरा से आए, इसीलिए आए कि हम लोग कभी यहां पर रहते हुए भी वैदिक सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं, जीविका निर्वाह करने के लिए आप लोग यहां पर आए हैं, धर्म कर्म को छोड़कर के नहीं। मुझे खुशी है कि यहां न्यूजीलैंड इत्यादि जगहों में लोग अपने बच्चों के साथ में मंदिरों में आते हैं, श्रद्धापूर्वक ठाकुर जी का नमन करते हैं, इसलिए यहां के लोग भारतवासी कुछ अच्छे हैं। अमेरिका में हमने देखा वे लोग मंदिरों में नहीं आते जाते, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, इसलिए उनके लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बात नहीं मानते और पाश्चात्य देश की स्टैली पर जीविका निर्वाह कर पति और पति का धर्म बच्चों का धर्म पालन नहीं करते। किंतु मुझे कुछ खुशी है कि यहां के लोग न्यूजीलैंड में भी गया, फिजी में भी, ये लोग कुछ ठीक है, तो इसी का स्मरण दिलाने के लिए आया। विशेष करके हमारे शिक्षा गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हैं, जिनको लोग प्रभुपाद के नाम से अभी जानते हैं, उन्होंने उनको मैं 1946 से मैं जानता हूं, बहुत दिनों से। आई नो स्वामी जी और सिंस लॉन्ग टाइम सिंस 1946, तो उनको मैं जानता हूं, उनकी बहुत मैंने सेवा की, उनके सारे ग्रंथ उनके ठाकुर जी मैंने इंडिया से भेजे और उनको तरह तरह से मृदंग करताल भी भेजा, और अंत में जब वो परलोक जाने लगे तो हमको स्मरण किया, बुलाया और अंतिम हमसे ही बात की, इसके बाद में बोले नहीं, शरीर को त्याग कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम विदेशों से मैंने बहुत सी शिष्य संग्रह करके लाए हैं, उनको मैं पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दे सका, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको सहायता देंगे। He told me, requested me, taking my hands in his hand, and weeping he told that you are qualified, our relations are transcendental. I have collected so many disciples from all part of India, whole world, but I could not train that I wanted. So I want that you should help them. I told him that don't worry, I will do it. Then he told that you should, with your own hand, you should give me samadhi. I told that yes, I will do it. I will follow you all. And I did. एंड दैट इज वाई आई शॉ दैट सो मेनी डिवोटीज आर बींग वीक, सो मेनी लेफ्ट ओ कृष्ण कॉन्शियसनेस. एंड ऑल्सो आई शॉ दैट ओ ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड डॉटर्स हु आर नाउ इन एवरीवेयर इन वर्ल्ड, वो जो दूसरे देशों में है उनको भी कुछ सहायता करनी चाहिए और इसीलिए मैं विदेश आया. दैट इज वाई आई कैन एवरीवेयर आई वेंट आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल. जहां मैं गया सब लोगों ने बड़े धैर्य के साथ में हमारी बातों को सुना, उसको पालन कर रहे हैं और जीवन में सुखी हैं. इसलिए मैं सनातन वैदिक धर्म की कुछ रहस्यपूर्ण बातें, गंभीर बातें, आवश्यक बातें आपको हम बतलाने की चेष्टा करेंगे. पहले हमारे ब्रह्मचारी जी पुंडरीक ब्रह्मचारी आपको वैदिक धर्म के गूढ़ रहस्यों के संबंध में कुछ आइडिया देंगे और ये बतलाएंगे कि एक आदमी जीवन में सुखी है, धनी है, धन से संपन्न है, बाल बच्चे भी हैं उनको और वो लोग सभी सुखी हैं, तो भजन किस लिए करने की क्या जरूरत है. इफ यू आर हेल्दी इफ वी आर वेल्दी ओ आवर ऑल द चिल्ड्रन एंड फैमिली इज ओके देन व्हाई वी शुड ट्राई टू डू भजन. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डूइंग भजन. इसके संबंध में पुंडरीक जी 15 मिनट तक कुछ बोलेंगे. इसके बाद में मैं सनातन धर्म के रहस्य के संबंध में मैं बतलाऊंगा. बोलो, खड़े होकर के ही बोलो, कोई हर्ज नहीं. तो बोलो. अपने संगी साथियों को, असुर बालकों को कुछ शिक्षा दी है. संक्षेप में हमारे भक्ति वेदांत माधव महाराज जी 10 मिनट में उन शिक्षाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करें.
जैनांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वंशाकल्पतरूपश्च कृपा.
जय जय राधारमण हरिभो. आप लोग भी पीछे से दो. थोड़े ही शेष शब्दों में अपने भारतीय शास्त्र वेद उपनिषद पुराण गीता भागवत रामायण उपनिषद का सार संक्षेप में मैं कुछ बतला रहा हूं, क्योंकि आज एक घंटे का ही समय है. फिर कभी हम 5-7 दिन के लिए आएंगे तो उस समय में हम कुछ विशेष रूप से बतलाने की चेष्टा करेंगे. हम लोग सभी सनातन धर्मी हैं. सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सदातन, जो भूत में था, भूतकाल में था, अभी भी है और सृष्टि के प्रलय के बाद में भी जो चीज रहेगी उसको सनातन कहते हैं. अभी अपनी आंखों से हम जो जो कुछ देख रहे हैं, कोई भी सनातन चीजों को आंखें नहीं देखती. आंखें सांसारिक चीजों को ही देखती हैं. हमारा भी शरीर है जिसको हम मानते हैं, आज ऐसा है, कल बूढ़ा है, परसों खत्म हो जाएगा, इसलिए सनातन नहीं है. हमारा कोई भी रिलेटिव सनातन नहीं है. ये संसार कुछ दिनों का है, फिर ये बदल रहा है मिनट मिनट में, कुछ देर के बाद में ध्वंस इसका हो जाएगा, इसलिए ये भी सनातन नहीं है. तो है सनातन क्या? है कुछ सनातन है. शास्त्रों में कहा, गीता में अर्जुन को कृष्ण ने समझाया, संसारिक चीजों को ही सनातन धर्म तुम क्यों मान रहा? तो ये कह रहा है कि मैं, ये हमारे कुटुंबी बंधु बांधव हैं, हम धन संपत्ति के लिए इन बंधु बांधवों का बधने में नहीं नहीं करना चाहता। ये लोग मर जाएंगे, हमारी सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगी, उनके पुत्र जो होंगे वो कुलंगार होंगे, वो अपने पुत्र नहीं होंगे, और हमारे सनातन धर्म की रीति ये नष्ट हो जाएगी। कृष्ण ने कहा, जे तुम बड़े मूर्ख हो करके बड़े पंडित की बात कर रहा है तू? तुम ये जानते हो कि ये सनातन नहीं है, मरने वाली वस्तुओं को, क्षणभंग वस्तुओं को तो सनातन बतला रहा है, बात ऐसी नहीं है। जो अभी आए हैं, अभी जो हैं, ये सब मरने वाले हैं, सनातन धर्म कुछ और ही है, इस चीज को समझो। वो कभी नहीं मरता सनातन धर्म, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो सब धारण करके रखता है, और वो उस वस्तु से अलग कभी नहीं हो सकता, इसलिए समझो इस चीज को, जो सनातन क्या है। शरीर ये कपड़ा है, नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक, इसके अंदर में आत्मा है, उसको आग नहीं छिला सकती, उसको हवा नहीं सुखा सकती, उसको अस्त्र शस्त्र तलवार बम एटम बम भी स्पर्श नहीं कर सकता, वो नित्य अमर शाश्वत सनातन है, वही सनातन। इसलिए जीवात्माएं हम लोगों के इस अंत के अंदर में जो हैं, जिसके निकल जाने से अभी हम मर जाते हैं, वो आत्मा अजर अमर शाश्वत और सनातन है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये प्रत्येक शरीर के अंदर में, प्रत्येक वृक्ष के अंदर में, प्रत्येक प्राणी के अंदर में, प्रत्येक पुरुष स्त्री और पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष सर्वत्र ही उनके अंदर में आत्मा है, वो मेरा अंश है, और इसके नाते वे हमारे सभी नित्य दास हैं। दे आर ऑल माई इटर्नल सर्वेंट एंड दे आर वर्शिपेबल। इसलिए इसके अंदर में आत्मा है, वो सनातन है, और एक सनातन मैं हूं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप्रिजौ शाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण के घर में जो छोटा सा बच्चा सांवले रंग का बंसी बजाता है और मक्खन चुराता है, गायों को चराता है, वो नंद बाबा का जो लड़का है वो साधारण नहीं है, पर ब्रह्म सनातन, वो सनातन परम ब्रह्म है। उसी से नारायण भगवान, नृसिंह देव, श्री रामचंद्र जी, सहर्ष शीर्षा पुरुष सभी उसी से निकले हैं, इसलिए बतलाया गया। एति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए ये कृष्ण है, स्वयं भगवान है, उसकी भगवत्ता से सबकी भगवत्ता है, उसको छोटा सा बच्चा मत समझो, वो ब्रह्मा और शंकर उसके चरणों का ध्यान करके लाखों जन्म में भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो ऐसा छोटा सा लड़का है, तो उसको इस रूप में देखो। और कैसा है, एक सेकंड के अंदर में ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों का ध्वंस करके फिर नया बना देगा, बड़ा कृपालु है, ऐसा ये नंद का वो लड़का है, वो सनातन है। दो वस्तुएं होती हैं, और ये जो सनातन है, कृष्ण जो सनातन है, परब्रह्म है, भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, बहुत से नाम इसके हो सकते हैं, किंतु ये जो कृष्ण है ये परिपूर्ण भगवान या परिपूर्ण खौती है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्ण, उसके समान कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है, उसका बड़ा सुंदर रूप है, ही हैज सो मच हाई क्लास ऑफ ब्यूटी एंड शेप, ही सो स्वीट, वो उसका बहुत ही सुंदर रूप है, कैसा रूप है, छोटा सा बच्चा सांवला सा, पीतांबर धारण की हुई, सिर पर मोर मुकुट, गले में बैजयंती माला पैरों तक, और जब मुस्कुराता है तो सारा विश्व उसके चरणों में लौट जाता है, आकर्षण कर लेता है सारे जगत को, ऐसा उसका रूप है, कैसा, नवकिशोर नटवर, गोपवेश बेनुकर, छोटा सा सांवला, कभी बूढ़ा नहीं होता, मुछ की रेखाएं नहीं उसको कभी आती, दाढ़ी भी नहीं उसकी बढ़ती है, 125 वर्ष का हो गया तो भी नहीं, आजकल आधुनिकी भगवान की दाढ़ी हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, दांत टूट जाता है, फिर उनको रोग हो जाता है, मर जाता है, उसको कभी नहीं हुआ, अपने किशोर रूप को लेकर के ही इस जगत से अंतर्ध्यान हो गया, अपने गोलोक वृंदावन में चला, उसका बहुत सुंदर है, जिस भगवान का रूप नहीं है वो भगवान नहीं है, भगवान का पहला निशानी क्या है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रूप होगा, उसको देखते ही सभी लोग आकर्षित हो जाएंगे और सबके हृदय को वो चुरा लेता है, जैसे कोई मक्खन चुराता था वो, ऐसे सबके हृदय को वो चुरा लेने वाला है, ऐसा उसका सुंदर है, जो गॉड है, गॉड मैंने क्या, जी ओ डी, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर, जो जगत का सृजन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, हे इज गॉड, बट दिस गॉड इज नॉट सुप्रीम गॉड, द पार्ट एंड पार्सल्स सो मेनी, कृष्ण के अंश के अंश के, कला के विकला, ये लोग जगत की सृष्टि करते हैं, इनके इशारे पर चलते हैं, वो छोटा सा वो किशोर मूर्ति वाला नव किशोर नटवर है, वो कृष्ण है, अद्भुत रूप है, तो जो सृजन करता है उसका आकार नहीं होगा, तो ये आकार आया कहां से, हम लोगों का सुंदर आकार, हमारे बाप का आकार, पेड़ पौधे पशु पक्षियों का आकार, ये आया कहां से, फ्रॉम व्हेयर, देखें होल वर्ल्ड हैविंग सो मेनी शेप्स, फ्रॉम व्हेयर देखें, डिसेंडेड, यदि भगवान में ही रूप नहीं है, इसलिए यह बात ठीक नहीं, तो जो ये कहते हैं कि वो हमारे फादर हैं गॉड, मैं उनका पुत्र हूं, संतान हूं, तो तुम्हारे बाप का रूप नहीं, इफ गॉड इज योर फादर देन मस्ट ही हैव सम शेप, एंड इफ इज नॉट, वो अपने अपने उनको इतनी शक्ति नहीं है रूप धारण कर सके, तो भगवान क्या हुआ, वो भगवान नहीं है, बाइबल में इसीलिए कहा गया गॉड हैज क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, यदि गॉड का रूप नहीं है तो उन्होंने अपने रूप के अनुरूप मनुष्यों को बनाया, तथे ये बाइबल का कथन भी मिथ्या हो जाएगा, इफ गॉड हैज क्रिएटेड आफ्टर हिज ओन में ऑल मैन, देन इफ देर इज नो शेप ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ, then how he made all the persons like him, so our shape is like Krishna, so unme roop hai, he has some shape, very beautiful shape God, and he is Krishna, and from Krishna Krishna, same name in Odisha, we devotees called him Krishna, aur Krishna se ye Christ, और ये क्राइस्ट ही जैसा जैसा जीसु के फादर कृष्ण है, यही कृष्ण ही भारतवर्ष में आए, वृंदावन में गए, जगन्नाथपुरी में गए, He went to all these places, Jagannathpur, and he saw that Krishna is worshipped by all. So he is father, and he accepted Krishna like a father, but that word was somewhat derived in Christ. No heart. Christ has come from Krishna. Yahi unke bhi pita hai. He is father of all his. So Krishna ka bahut sundar roop hai. To jinka roop nahi hai, wo bhagwan kya ho sakta hai? Usme koi gun hi nahi hoga. Aap roenge, prarthana karenge, to sunega kahan? Uska to roop kaan hi nahi hai. Kahan se sunega? Hai? Jo zero hai, usse koi srishti nahi nikal sakti. From nothing any can nothing can be direct. Never, never, never. There must be some whole thing. Positive thing and whole. Satya samya idam agrasi. Wo Prabhu hamare purna hai. Krishna hamara purna hai. Purna mada, purnam idam, purnat purnam buddhyate, purnasya purnam madayo, purnam eva shasyate. Wo Krishna hamara purna hai. भगवान हमारे पूर्ण हैं. पूर्ण में से सब कुछ निकालने पर भी वो पूर्ण ही रहता है. इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव एनी अमाउंट इन्फिनिटिव इफ इट इज टेकन बट इवन इट विल बी इन्फिनिटिव. सो कृष्ण इज लाइक दैट. ओ लव थाउजेंड्स ऑफ अवतार इनकॉर्नेशन हैव कम आउट फ्रॉम कृष्ण. And we have come from him. Whole world has come from him. But even he is complete. So, jo roop nahi dharan kar sakta, wo bhagwan kaise ho sakta hai? Wo bolega kaise? Sunega kaise? Hamare upar mein daya kaise karega? Isliye wo brahma nahi hai. Jo ki jiska roop nahi hai. Aur hamare musalmin bhai log jo hain, wo log bhagwan ki murtiyon ko nahi mante. To unse ye nivedan hai, कि उसी जगह में कुरान के एक हदीस में मंत्र में यह लिखा गया इन्ना लहा खला का मैन सूरत ही. मैन सूरत ही जैसे खुदा तल्ला का रूप है शेप है वैसे ही मनुष्यों को बुलाया बनाया. तो उनके कुरान में भी ऐसा लिखा है. वो मानते नहीं. क्यों नहीं मानते? कोई आस मूर्ति को तोड़ देता है और यदि मूर्ति होगी तो जन्म होगा. इस डर से वो नहीं मानते. किंतु वो जानते नहीं हैं भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है. इन आंखों से नहीं स्पर्श किया जा सकता. इंद्रियों से उसे देख नहीं सकते हैं. जब इसकी आत्मा का सुधार होगा और वो निर्मल हो जाएगी अपने आप वो दिखाई पड़ेंगे. हमारे जीव का भी ऐसे ही शरीर के अंदर में स्वरूप है. ऐसे मत सोचो जे ये हमारा शरीर है मैं हूं. ये तो असुरों का कार्य है. अभी पुंडरीक और महाराज जी ने बतलाया ये शरीर हम नहीं है. जो ऐसा सोचते हैं वो मनुष्यों में नहीं पशुओं में भी गधे हैं मूर्ख हैं. ये शरीर मैं नहीं हूं. आज बूढ़ा हो जाता है कल मर जाता तो सनातन कहां रहा? इसलिए इसके अंदर में जो भगवान का अंश है वो सनातन है और उसका धर्म है सनातन. वो क्या? आप लोगों ने योग का नाम सुना होगा. आजकल जगह जगहों में मैदानों में योग क्रिया होती है. लोग योग सिखलाते हैं. बड़े बड़े साधु संत लोग भी भारतवर्ष भी आ रहे हैं इधर से भी और योग की शिक्षा देते हैं. योग माने क्या? दो वस्तुओं के मिलने का नाम योग होता है. दो वस्तु होनी चाहिए फिर उसका मिलन होने से योग होता है. जैसे एक और एक दो हुआ ना. वन प्लस वन इज टू. दिस इज कॉल्ड योग. एक और चार एक. यह गलत है कि ठीक है? एक और चार मिलकर के एक होगा पांच हो जाएगा. एक और एक एक नहीं होता दो ही होगा. जो कहते हैं कि सब कुछ एक है और वही प्रभु एकमात्र एक है ऐसी बात नहीं. एक क्या चीज है? एक किसको कहते हैं, हिंदी में हम लिखेंगे ए क, तो दो अक्षर हो गया। अंग्रेजी में लिखेंगे वन, तो ओ एन ई, तो तीन हो गया। यदि ऐसे लिख दें वन, तो लाखों डॉट्स मिल करके ये एक हुआ। एक रहा कहां, यहां एक सभा हो रही है, एक सभा। कितने आदमी हैं, 400 लोग हैं ना? तो एक कहां रहा, एक सभा। एक भारतवर्ष राष्ट्र है, उसमें एक ही है भारत। भारतवर्ष में एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कितने कितने हैं, लाखों लोग हैं, लाखों जंगल है, लाखों गाय बैल भैंस, यह सब मिलाकर के तब पूरा राष्ट्र होता है। ऐसे भगवान में अखिल प्राणी वास करते हैं और अखिल प्राणियों में भगवान वास करते हैं। ये सब मिला करके तब ये भगवत शब्द बना है, तब ये गॉड या भगवान है। इसमें हमारा भी रूप है, हम भगवान के इटरनल दास दासी हैं, किंतु अपने को भूल गए हैं। अब भगवान से जोग करना है, हाथ पैर का ऐसे करना और पैर को ऊपर उठाना, ऐसे ये योग नहीं है। ये तो कसरत है शरीर को जरा सबल रखने के लिए, ये योग नहीं है, है? किसी को पेट की बीमारी हो गई तो चलो योग का वहां पर शिक्षण हो रहा है, वो कुछ कसरत करा देंगे, हमारी वो ठीक हो जाएगी। भाई ये योग कहां रहा, किसके साथ में योग किया? इसलिए कर्म योग उसको कहते हैं जब अपने कर्मों को अर्पण करो भगवान के लिए, तब भगवान के साथ में ये कर्म योग हुआ जो भगवान के साथ में हमें मिलाएगा। ज्ञान जी किसको कहते हैं, जब यह ज्ञान तत्व ज्ञान भगवान से हमको मिलाएगा, जो कराएगा, तो ये होगा योग। भगवान को पाने के लिए जितने भी उपाय हैं हमारे शास्त्र इत्यादि में, वेद सनातन धर्म में बतलाया गया, उसमें प्रेम एक धर्म है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सांप कुत्ते सुअर गधे हो, सबके अंदर में प्रेम है। एक महा जंगली खुखार बाघ दूसरों को मार सकता है, किंतु अपने बच्चे से प्यार करता है, अपनी पत्नी से प्यार करता है। बहुत से डकैत हैं भारतवर्ष में, बीरप्पन और कितने कितने बड़े बड़े डकैत हैं, वो दूसरों को तो मारते हैं, उनका धन सब ले लेंगे, कि तो अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसलिए किसी न किसी प्रकार से ये प्रेम लव अफेक्शन सब प्राणियों में है, गधे और कुत्तों तक में भी है, बाघ तक में भी है। ये एक ऐसा मसाला है जो भगवान के साथ में हमारा योग कर देगा, इसलिए इसका नाम है प्रेम योग। यही प्रेम योग समस्त शास्त्रों का मूल तात्पर्य है। ईंट से ईंट जोड़ने के लिए मसाला की जरूरत होती है। इफ यू वांट टू टाई द ब्रिक्स टुगेदर टू मेक ए बिल्डिंग, यू विल हैव टू गिव सम काइंड ऑफ सीमेंट और एनीथिंग दैट इट कैन बी जॉइंट। यदि हम घर बनाना चाहते हैं तो ईंट से ईंट को जोड़ना है ना, तो मिट्टी के गिलावे से भी हो सकता है, सीमेंट से भी हो सकता है। आजकल नए नए मसाला निकल रहे हैं, उसे जोड़ सकते हैं। ईंट से सीमेंट से भगवान को जीव से नहीं जोड़ सकते, वहां मसाला क्या है, भक्ति या प्रेम है वो मसाला। यदि प्रेम आपके हृदय है तो ये भगवान से आपको जोड़ देगा। भक्ति रेवने रेवैनंग दर्शयति भक्ति रेव भूयसी भक्ति वसो पुरुषा। भक्ति एक ऐसी है जो ये ऊपर में उठकर कुछ बढ़ करके अपनी प्रेममयी अवस्था में भगवान को भी खींच लाती है और उसे बंध देती है। आपको पता है दुर्योधन की भरी सभा है, वो अपने कपड़े को ऊपर उठा रखा है और दुशासन को कहता है कि तुम्हारे अंदर में 60,000 हाथियों का बल है, जल्दी से द्रौपदी के कपड़ों को हटाकर नंगी करके हमारे यहां पर बैठाओ। ये कहती है कि अंधा का पुत्र अंधा होता, मैं इसको दिखला दूं जो मैं कैसा अंधा हूं। जल्दी से इसे नंगी करके, और इसके पति लोग भी बैठे हैं और सारी सभा भीष्म द्रोण कर्ण सब बैठे हैं, जल्दी से कर। वो उठ करके खड़ा हो गया, रजस्वला होकर के उसके चोटी को पकड़ करके सभा में लाया और ला करके खड़ा करके उसके कपड़े को खींचने लगा। वो रोने लगी, पतियों के दर्प में देखा पति कैसे बलवान, इंद्र और जम को भी दुरुस्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। जब ही अर्जुन अपने धनुष बाण लेकर के उठे, अभी एक मिनट के अंदर में सबको समाप्त कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने उनका कपड़ा पकड़ कर बैठ जाओ, देखो क्या होता है, धैर्य धारण करो। बैठ गए। इतने में भीम की तरफ में देखा, भीम भी गदा लेकर के फटफट करके उठे, जा भी मारूंगा दुष्टों को। उन्होंने धर्मराज जी ने युधिष्ठिर ने इनका भी कपड़ा कर करके, ठहर जाओ थोड़ी देर, देखो क्या होता है। ये लोग नहीं उठ सके, कुछ न कर सके। भीष्म पितामह की तरफ में देखा, आप तो हमारे लोक पितामह हैं, सबके पिता के पिता, हमारी लज्जा रखिए। उन्होंने उनको बुलाया, द्रोणाचार्य जी को। उन्होंने धृतराष्ट्र की तरफ में देखा, किंतु आज कोई कुछ नहीं कर रहा। द्रौपदी निराश हो गई, केवल अपने मुख में सब कपड़े अब निकल चुके हैं, अब थोड़ा सा बाकी है, नंगी हो जाने वाली। दांतों तले उसने कपड़े को रखा है। उधर में द्वारका में कृष्ण छटपट कर रहे आने के लिए, द्रौपदी पुकार रही है। रुक्मिणी ने पूछा, जा छटपट आज क्यों कर रहे? नहीं कि हमारे भक्त पर आज भीड़ पड़ी है, अभी उसकी रक्षा करना है, जल्दी से जाइए। जल्दी से कैसे जाऊं, पूर्ण समर्पण नहीं जो है। अभी वो सोचती है कि दांतों तले अभी कपड़े को अटका करके रखूंगा, हम अपनी लज्जा बचा लेंगे, यही छोड़ देगी, मैं चला जाऊंगा। जब देखा और कोई उपाय नहीं है, तो द्रौपदी ने हाथ उठा दिए और कपड़े को भी दांतों से छोड़ दिया। हे गोविंद राकुशरण, अब तो जीवन है प्रभु, मैंने जीवन समर्पण कर दिया, चाहे लाज रखो और न रखो, अब तुम्हारे ऊपर में है। और जब ही ऐसे कहा, भगवान एक सेकंड अपना जूता पहनना भूल गए, गरुड़ की सवारी भूल गए, और उनको वहां पर उपस्थित होना पड़ा और कपड़े बन गए, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। अब तो गजों और गजों, हजार गज लाखों गज कपड़े 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 निकलने लगे, उसकी भुजाएं थक गई। उस समय में सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, वस्त्र हैं कि ये कृष्ण ही बने हुए हैं वस्त्र, ऐसे अपने भक्तों की लाज रखते हैं वो प्रभु। जिसका रूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, वो ब्रह्म का क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। हमारे बुद्ध देव भारत पर सही निकले, किंतु भगवान का विश्वास नहीं। भगवान बुद्ध देव दो हैं, एक कपिल वस्तु के साधारण मनुष्य राजा के लड़के, और एक भगवान जो गया में उनका जन्म हुआ था, वो दो हैं भगवत बुद्ध। इन जिन बुद्ध सिद्धार्थ का नाम लिया जाता है, ये भगवत बुद्ध नहीं है, इनको भगवान पर भरोसा नहीं, इसलिए समाधि कितने वर्षों तक लगाई, कुछ नहीं उनको मिला, तो उन्होंने कहा ये जगत झूठा है, शून्य है, भगवान भी निराकार, ये झूठ मूठ की बात है, तो जीव क्या है इसका डेफिनेशन नहीं दे सके। अंत में नास्तिक बने, वेदों को भी नहीं माना। उसके तरफ में मत जाओ, बड़े जोर शोर से प्रचार उनका हो रहा है, उसे सावधान रहो। जितना निराकारवादी हैं, उन सब लोगों से सावधान रहो। यदि वो आए जाए तो वहां पर झाड़ू लगा करके गोबर से लिप दिया जाए, तब तो ये ठीक होगा, अन्यथा नहीं। इस विषय में खूब दृढ़ रहना चाहिए। इसलिए जो भगवान को निराकार मानता है, उनकी विचार ठीक नहीं है। इसलिए हमारे भगवान का रूप है और अनंत उनमें सच्चिदानंद गुण है, किंतु जगत के नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पर उनको निराकार कह दिया गया। निराकार किस लिए कहा गया? निर्गत आकारा, जिसे कि प्राकृत आकार नहीं है, सच्चिदानंद उनका आकार है। काली हरद में जहां पर केवल बीस ही बीस उमड़ रहा था, आग लग रही थी, उसमें कूद गए। मरे क्यों नहीं? एक साधारण व्यक्ति इतना ऊंचा गोवर्धन गिरिराज को एक सेकंड में उठा करके और अंगुली पर रख सकता है कोई? दो दो बार विश्व ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखलाया, जलती हुई दवाग्नि को उन्होंने ऐसे किया और पान कर लिया, कोई कर लेगा? मथुरा में ऐसे ही एक ब्रह्मवादी मिले, आर्य समाजी। उन्होंने कहा कि भगवान का तो आकार नहीं है, किंतु मैं ब्रह्म हूं, अम ब्रह्मास्मि सर्वम खलिदम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। मैंने कहा जो बहुत आज हमारा बहुत सौभाग्य जी आप भगवान के दर्शन मिले, तो मैं थोड़ी सी परीक्षा लूंगा शास्त्रों में जैसा लिखा है। भगवान विष हजम कर लेते हैं और आग भी खा लेते हैं। मैंने बच्चों को आदेश दिया, रसोई घर से जलती हुई एक लकड़ी ले आओ, आज इस ब्रह्म के मुख में दो, देखो जैसे ये यदि हजम कर लेता है तो मान लेंगे ये ब्रह्म है और मैं इसकी पूजा करूंगा। जहू लकड़ी लेने के लिए, आग की लकड़ी लेने के लिए गया, मैंने जा इसको पकड़ रखो, भागे नहीं ये ब्रह्म। और ब्रह्म तो छटपट छटपट करने लगा, जब वो आग आती हुई देखा तो कहा अरे छोड़ो मेरी, मेरा प्राण गया, तेरे ब्रह्म का प्राण जाता है थोड़े, ऐसे मत कहना आज मैं ब्रह्म हूं। इसलिए इन सब चीजों को समझना चाहिए, इसके अंदर में आत्मा है, अजर अमर है, शाश्वत है, सनातन है, उसका प्रेम ही धर्म है। इसलिए शास्त्रों में भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं की गई, उनके प्रेम को पाने के लिए प्रार्थना, यही हमारे लिए प्रयोजन है। हिरण्यकश्यपु, रावण और सब, शिशुपाल जरासंध इत्यादि थे, कृष्ण को देखा, कंस आग से जल मरता था क्रोध से, इसलिए कृष्ण का ही होना ही ये उत्तम बात नहीं है। कृष्ण के यदि प्रेम हो तो कृष्ण को देख करके आनंद होता है, यदि कृष्ण को देख करके क्रोध आया, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं हुआ और उसके प्रति मारने की बात हुई, जैसे पुतना देखी कृष्ण को, पुतना ना देखा और उसको अपने स्तन में दूध भर करके नहीं, विष भर के कालकूट ले आई और कृष्ण को मारना चाहा, कृष्ण तो सामने थे, क्या हुआ? कंस दिन रात उन्हीं की चिंता कर, कब उसको मारूंगा, कब उसको मारूंगा। बदला वो मरने के बाद में बदला, भगवान की थोड़ी सी चिंता की। पुतना ने थोड़ा सा माया का रूप धारण किया, इसलिए कृष्ण ने उसको कहा गोलोक में माता की गति देती, ऐसा दयालु है कृष्ण, ऐसे दयालु को छोड़ करके कौन किसका भजन करे। बुद्धिमान वही व्यक्ति है, कालकूट विष अपने स्तन में लेकर के कृष्ण को मारने के लिए आई और थोड़ा सा माता का वेश बनाकर, अरे बेटे बेटे लाला लाला, और गोदी में ले लिया, विष मुख में भर दिया। और कृष्ण ऐसे दयालु, कैसे दयालु, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैया बना करके, एक बार तो तूने मैया कह दिया है, मैया के भाव के वजह से उसको सदती दे करके इस असुर शरीर को हटाकर और उसको गोलोक वृंदावन में अपनी मैया का स्थान दे दिया। इतने बड़े दयालु कृष्ण, इसलिए ऐसे कृष्ण को छोड़ करके कौन ऐसा दुर्भागा मूर्ख जीव है जो कृष्ण का भजन नहीं करेगा, अर्थात उनका ही करना चाहिए। इसलिए आप लोग भी समस्त शास्त्रों से समर्थित इस कृष्ण को भजन करेंगे, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। जानते हैं ये कैसे होता है? ये कृष्ण से संबंध होता होना चाहिए। ये संबंध कैसे आएगा, उनका भजन कैसे मिलेगा? कोई रियलाइज सोल हो, इन लोगों ने बतलाया ना, संसार से अनाशक्त और हमारे समस्त प्रकार की शंकाओं को दूर करने वाला शास्त्रज्ञ हो और भगवान की अनुभूति हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। जैसे आप लोग जब खाते हैं, भोजन करते हैं, तो एक ग्रास खाया, दो ग्रास खाया, तीन ग्रास खाया, साथ साथ में आप समझते हैं कि मैं भोजन कर रहा हूं, और भूख फिर थोड़ी सी उतने ही परिमाण में दूर हो जाएगी, शरीर में पुष्टि होएगी, अनुभूति हो गई, और अब अधिक नहीं खाऊंगा। ये तीन चीजें साथ होती है। भजन करने के साथ ही साथ में यदि शुद्ध भजन होगा तो आत्मा प्रसन्न होगी, भगवान की अनुभूति होगी और संसार से विरक्ति होगी, तीनों एक साथ में होगा। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र, एक साथ में होगी। इसलिए यदि हम भजन करते हैं, संसार से डरते हैं और चित्त सब समय प्रसन्न नहीं रहता है, तो इसका मतलब है ये कुछ हम में त्रुटि है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, हमारा गुरु शुद्ध नहीं है, या हम ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। यदि गुरु ठीक है तो हम पालन ठीक से करना चाहिए, और यदि हम पालन ठीक कर रहे हैं किंतु नहीं होता तो गुरु में दोष है। इसलिए वैसा सद्गुरु बना करके भजन करना चाहिए। कैसे आरंभ करेंगे? सद्गुरु ये बतलाता है, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से, पुण्य कार्य से भगवत भक्तों का संग मिलता है। सुकृति दो प्रकार की होती है, कृति माने अच्छा पुण्य, पुण्य ये दो प्रकार का होता है। कैसा पुण्य? जो माता पिता समाज की सेवा करते हैं, दान देते हैं, समाज की शिक्षा में और सब में योगदान करते हैं, प्राणियों की रक्षा करते हैं, ये लौकिक पुण्य है। इससे आपको धन धान्य मिलेगा, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी, आप जीवन में कुछ दिन के लिए सुख और शांति से रह सकते हैं। परमार्थी की यह श्रद्धा नहीं है, पुण्य नहीं है, वो भगवत संबंधी कोई कार्य हो, यदि किसी वैष्णव का आदर किया हो, भगवान का नाम का कीर्तन कहीं सुन लिया, किसी संत का आदर किया, कहीं मंदिर में गए उसकी परिक्रमा कर ली, वृंदा देवी की न जानते हुए ही परिक्रमा कर दी, उसमें पानी दे दिया, तुलसी जी में भी पानी दे दिया, ये सुकृति कैसी होगी? ये बहुत से मिलने के बाद में पुष्ट होने पर भगवान के चरणों में श्रद्धा होगी और संतों का संग मिलेगा, यथार्थ संत, नहीं तो नकली साधु मिल जाएंगे, आपको पथभ्रष्ट कर देंगे। जैसे एक सुकृति का मैं उदाहरण दे करके बतलाता हूं, एक कबूतर और कबूतरी पेड़ की डाल पर बैठे थे, भागवत की कथा, और एक बहेलिए ने बाण से पुरुष कबूतर को मार दिया, बाण उसके हृदय में चुभ गया और रक्त से भर गया और जमीन पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब तक होश था छटफट करता हुआ वहीं पर फड़फड़ाने लगा, और एक मंदिर था, मंदिर के चारों तरफ में घूम गया और घूमते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब उसको मंदिर की परिक्रमा करने का फल मिल गया, चाहे समझे और न समझे, ये भगवान का मंदिर था, और उसका फल हुआ दूसरे जन्म में संत उसे मिले, मनुष्य का जन्म उसको मिला, और फिर वो भगवान का भजन करके संसार से मुक्त हो गया। इसलिए ये जो हरि कथा साधारण रूप में जो सुनते हैं ये सुकृति हुई, और जो हरि कथा प्रेम से सुनते हैं उनके लिए साधन हुआ, दोनों के लिए। कोई संत आए उनके लिए व्यवस्था कर दी, भगवान की कथा बोले, ये सब सुकृतियां हैं, उनको किसी प्रकार का लेन देन हो, ये सुकृतियां हैं, इसे संत मिलते हैं, अन्यथा संत नहीं मिलेंगे। संत क्या करते हैं? आपको एक संसार से अलौकिक चीज देंगे, वो चीज क्या है? कृष्ण का भजन करने से तुम्हारा मनुष्य जीवन सदा के लिए सफल बन जाएगा, इसका नाम श्रद्धा है। इस चीज को आपके हृदय में भर देंगे, बिना भगवत भजन के सुखी और शांति नहीं रह सकते, कोई भी चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, बिना भगवत भजन के सुखी नहीं रह सकते। तुलसीदास जी ने 9 उदाहरण पेश किए हैं, उन्होंने कहा है भगवान के भजन के बिना कोई सुखी रह सकता है, ये कदापि संभव नहीं है। खरगोश के भले ही सींग जाम जाए, खरगोश आप लोग जानते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, उसके सींग नहीं होते, कछुए के पीठ पर बाल उग जाए, केश उग जाए, यह भी नहीं होता। आकाश में फूल खिल जाए, यह भी संभव है। नहीं खिलता तो भी कहते हैं कि हो जाए, हम मान सकते हैं। आग
से अनल,
बर्फ से
अनल,
आग यदि हो सकती है हो जाए। बर्फ से आग नहीं पैदा होती किंतु हो जाए, यह भी मैं मान लूंगा। और भी जो अनहोनी चीजें हैं हो जाएगा। बांझ के पुत्र को किसी ने मार डाला, यह भी मान लूंगा। बांझ का तो पुत्र ही नहीं है, तो उसके बेटे को कौन मारेगा, कैसे मारेगा, यह भी असंभव है। किंतु इस असंभव बात को भी मैं मान लूंगा। बारी मथे बरु हो ये घृत शिकता ते बलु हो बेनु हरि भजन न भवतर्य यह सिद्धांत अपे। बिना हरि भजन के भाव सागर से नहीं तर सकते, सुखी नहीं हो सकते, शांति भी नहीं आएगी। भगवान के भजन से ही सुख और शांति होगी। पानी को मथने से भले ही घी निकल आए, होता है, पानी को मथने से घी नहीं आएगा। और बालू को, रेती को क्या पीसने से तेल नहीं निकलेगा। सरसों को पीसने से तेल निकलेगा, तिल से तेल निकलता है। जिसमें जिस चीज की पोटेंसी नहीं है वो आएगी कहां से। इसलिए असंभव बातें हैं, इसको भी मान लूंगा। किंतु बिना हरि भजन का कोई मनुष्य सुखी हो सकेगा, ये असंभव है। आप लोग भी गांठ बांध लेंगे, रहिए संसार में, बाल बच्चों को भगवान का सेवक मानिए, सेविका मानिए, पत्नी को भी पति को भी भगवान का सेवक मान करके संसार में रहिए। अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ में पूरा करें, किंतु भगवान को कभी कदापि न भूलिए। सभी भगवान से आए हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान के लिए दीजिए जरूर। अंततः सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान का स्मरण में दें। छुट्टियों के दिन में विशेष रूप से एकादशी इत्यादि के दिन में भगवान का स्मरण करें, आपका जीवन सुखमय और शांतिमय। उसके लिए गीता भागवत गारंटी है। नित्यानंद प्रभु जी जो महाप्रभु के साथ में आए थे, जो बलदेव के अवतार बलदेव हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा की, यथेष्टं रे भ्रातः कुरु धरु हरि हरि ध्वान। ओ मनुष्यों तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम। जोर से कब बोलो, यदि हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।
मैं प्रतिज्ञा करके, हाथ करके, उठा करके बोलता हूँ, नित्यानंद जी कहते हैं, प्रतिज्ञा करके एक बार नहीं, हरे नाम है। तीन बार प्रतिज्ञा करके, मैं इसके लिए उत्तरदायित्व हूँ, यदि नहीं हुआ तो मैं इसके लिए दायित्व नित्यानंद जी। जरूर होगा सुख और शांति, जरूर होगा, और भगवान का तुम दासत्व को पाएगा, तुम्हारा जीवन सफल जरूर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ में। वैसे मैं भी शास्त्रों की बातों को लेते हुए मैं भी ऐसे गारंटी के साथ में कहता हूं, यदि मांस अंडे डीम और सिगरेट इत्यादि धूम्रपान करना छोड़ दें और भगवान का थोड़ा सा भी भजन करें, जरूर भवसागर से तर जाएंगे। नौका वहीं पर रहेगी, वो इसी पार में लगी रहेगी और आप देखेंगे आप कब उस पार में निकल गए। यह सारा संसार गाय की खुर की भांति छोटा सा बन जाएगा और आप लोग देखेंगे जो है हरि नाम करते हुए। क्यों ऐसा, कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां, सारे एपुलेंस, ऑल हिज मर्सी ही हैज इन्वेस्टेड इन नेम, सो नेम आर मोर पावरफुल देन कृष्ण हिमसेल्फ राम हिमसेल्फ। उनका नाम ऐसा है, शक्तिशाली। उन्होंने अपनी सारी करुणा, ऑल मर्सी हैज invested in this powerful name, so names are more powerful than Krishna and Ram। इसलिए ऐसा विश्वास करके आप उनका भजन कीजिए, जरूर कुछ ही दिन में आपका चित्त बदल जाएगा और सुख और शांति का अनुभव करेंगे। किंतु याद रखिए, नाम भगवान का दो प्रकार का है। जो नाम आप या जो मंत्र आप कहीं से सुन करके, देख करके, पढ़ करके करते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं होती, उसको शब्द ब्रह्म नहीं कहते। जो लोग इसका साधन करते हैं और साधन करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, भगवान की अनुभूति है जिसमें शक्ति आ गई है, वो अपने हृदय का आराध्य धन कृष्ण को, नाम को आपको दे सकते हैं। इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। और साधारण लोग जो इधर उधर से सुन करके बिना गुरु धारण किए कहते हैं करते हैं, उनको सांसारिक चीजें लाभ होगी, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, उसका स्वरूप नहीं आएगा। इन चीजों को अच्छी तरह से समझिए। आप लोग यदि जानते होंगे, गेहूं के खेत में, धान के खेत में कुछ घासें होती हैं जो देखने में गेहूं और धान की भांति होती है, उसमें पुष्ट दाना नहीं होता, धान तो लगेंगे किंतु उसमें चावल नहीं होते, ऊपर से धान के बीज जैसे दिखते हैं। ऐसे ही जो गुरु सिद्ध नहीं है, जिसको अनुभूति नहीं है, भगवान का भजन नहीं किया है या अपने आप हरिनाम करने लगे, उसे सांसारिक चीजें मिल सकती है, किंतु लव ऑफ गॉड और स्पेशली ऑफ वृंदावन ब्रज, ये उसको आप कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। वो तो रूप सनातन जैसे गुरु हों, नारद जैसे गुरु हों, व्यास जैसे हों, सुखदेव गोस्वामी जैसे शिष्य हों, तब वो इसको रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए शब्द ब्रह्म के लिए कोई अनुभवी गुरु होना चाहिए जो हमारा मार्ग प्रदर्शन करे, जिसमें तनिक भी लोभ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, संसार से परम विरक्त होंगे और जगत के प्रति बहुत हम्बुल होंगे, बड़े दयालु होंगे, उनका दिल संसारिक लोगों के दुख से द्रवित हो जाता। इसलिए हमारे स्वामी जी भक्तिवेदांत स्वामी, he came from India, he went to New York, went. Why he came? For wealth, for reputation, why he came? Because his guru has ordered, go and help them, जाओ और उनकी सहायता करो। इसलिए दुखी होकर के जैसे तैसे मरते हुए वो सिंधिया नेविगेशन से आए, एरोप्लेन से नहीं, हम तो एरोप्लेन से आते हैं, वो एरोप्लेन से नहीं आए, किस लिए? बूढ़ी स्थिति में, बूढ़े होकर के भी जगत के लोगों का कष्ट दूर करने के लिए, बड़े दयालु होते हैं। इसलिए ऐसे गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, उनसे भगवान की कथाएं सुनिए, वो भगवान के प्रेममयी प्रेम आपके अंदर में भर देंगे और बल इसी जन्म में ही हो सकता है या दूसरे जन्म में भगवान को प्राप्त, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। यदि इसने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने बतलाया ना, मनुष्य गधों में, जानवरों में वो गधा है, दिन रात किस लिए इतना काम करता है, यदि एक सुई का नोक और एक धागा भी यहां से नहीं ले जा सकते, सब चीज तो यहीं पर धरा रह जाएगा, शरीर भी धरा। याद रखो मृत्यु की क्या होगा, ये धन संपत्ति और ये क्या होगा मरने के बाद में, ऑलवेज ट्राई टू नो एंड रिमेंबर दिस, दैट डेथ इज कमिंग, वी विल डाई, व्हाट विल बी आफ्टर आवर डेथ, यू शुड रियलाइज एंड देन यू शुड डू, तब भगवान का नाम कीजिए। एक नाम भी यदि भगवान के मुख से निकल गया किसी तरह से, मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानम सकल निगवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत परिगीतम श्रद्धया हेलिया वा भृगुमर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। एक नाम भी निकल जाए आपको ये संसार से मुक्त कर देगा, किंतु इससे ब्रज प्रेम नहीं होगा। ब्रज प्रेम होगा ऐसे संतों के अनुगत्य में रह करके भजन करेंगे तो वो ब्रज प्रेम भी मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे नाम करने से चलते फिरते उठते बैठे नाम का आभास होने से भी संसार से मुक्ति मिल जाएगी। अब समय हो गया है इसलिए आज मैं यहीं पर वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप लोग जैसे भी तैसे अंततः एक बार भी सवेरे अपने काम पर जाते हुए या सो करके उठते समय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सारा दिन कुछ भी मत करिए किंतु ये नाम का उच्चारण कीजिए, और कुछ ना करें भले या करें, एक यही कृष्ण नाम आपको संसार से पार कर देगा गारंटी के साथ। मैं फिर अगले वर्ष आऊंगा और आप लोग देखिए आपका चित्त बदल जाता है कि नहीं, आपके चित्त में सुख और शांति आती कि नहीं, हमें देखूंगा, जरूर आएगा। गौर प्रेमानंद।